पृष्ठ संख्या 46। इस प्रकार उत्तरी भारत में दिल्ली को उर्दू साहित्य का केंद्र बनने का सौभाग्य मिल गया, और जैसे जैसे समय बीतता गया दक्षिण का साहित्यिक प्रभाव मंद पड़ता गया। मुगल राज्य बड़े वेग के साथ पतन की ओर अग्रसर हो रहा था और राजनीतिक क्षेत्र में उसकी शक्ति घटती जा रही थी, परंतु एक प्रकार से महान तथा जीवंत परंपरा रखने के कारण उसमें स्थापित रहने की योग्यता भी बाकी थी। मोहम्मद शाह बादशाह के युग में राज दरबार षड्यंत्रकारियों का अड्डा बन गया था। बादशाह ने अपनी सारी शक्ति बड़े बड़े अमीरों को सौंप दी थी और स्वयं भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बनाकर हर प्रकार के उत्तरदायित्व से अलग रहना चाहता था। दिल्ली की शोभा इतनी बढ़ गई कि ऊंचे कर्मचारी दिल्ली से दूर रहना ही नहीं चाहते थे और अधिकांशतः बादशाह के संग रंगरेलियां मनाते। अमीरों के आपस के झगड़े और नई शक्तियों के प्रबल होने के कारण एक विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह को इसका अवसर मिल गया कि वह दिल्ली पर चढ़ आए। अतएव 1739 ईस्वी में वह एक प्रकोप के समान पंजाब को कुचलता हुआ दिल्ली के द्वार पर आ पहुंचा। मुगल बादशाह उसका मुकाबला ना कर सका और दिल्ली खून में डूब गई। कई कवियों और इतिहास लिखने वालों ने इस विनाश का भयंकर चित्रण किया है। नादिर शाह दिल्ली की सारी संपत्ति लेकर चला गया। यद्यपि वह घाव थोड़े दिनों में भर आया, परंतु जो नई शक्तियां जन्म ले चुकी थी उनको दबाना और राज्य के विभिन्न भागों को अलग होने से बचाना भी मुगल बादशाह की शक्ति से बाहर था। धीरे धीरे यही चीज उनके लिए घातक सिद्ध हुई। भारतवर्ष के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर दृष्टि डाली जाए तो यह जान पड़ता है कि अब ना तो चित्रकला की उन्नति हो रही थी न वास्तुकला की। विभिन्न भाषाओं के अंदर भी अब कोई तुलसी, जायसी, सूर और कबीर पैदा नहीं हो रहे थे। फारसी भाषा जो उच्च वर्ग की सांस्कृतिक और व्यवहारिक भाषा थी, भारत में उसकी जड़ें भी सूख रही थीं। इसलिए जीवन और सामाजिक चेतना के प्रभाव से उर्दू उन्नति की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके साहित्य में वह शक्ति नहीं दिख पड़ती थी जो एक आगे बढ़ते हुए राष्ट्र और प्रगति करती हुई जनता के साहित्य में मिलती है। सामंतशाही युग में साहित्य राज दरबार के संरक्षण और सहानुभूति पर निर्भर होता है, और मुगल राज्य ऐसा दुर्बल हो रहा था कि वह उर्दू साहित्य की प्रगति में किसी प्रकार से सहायक नहीं हो सकता था। फिर भी साहित्य और कला के स्रोत सूखे नहीं थे। मोहम्मद शाह के दरबार में भारतवर्ष की संगीत कला जीवित थी और किसी सहारे के बिना उर्दू भाषा साधारण जीवन में अपनी जड़ें फैला रही थी। पृष्ठ संख्या 47। समय वह था कि सिख, जाट, मराठे सभी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। दूर दूर के मुगल प्रांत स्वाधीन हो रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक अमर बेल की तरह जीवन पर छाई जा रही थी। एकता न होने के कारण उत्तर पश्चिमी भारत किसी समय भी विदेशी आक्रमण का निशाना बन सकता था। अतः नादिर शाह के 10 वर्ष बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत की ओर रुख किया। केंद्र में बड़े बड़े जागीरदार प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अपनी अपनी टोलियां बनाए हुए थे। बादशाह उनके हाथ में कठपुतली से अधिक शक्ति ना रखते थे। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और जनता एक विवशता की हालत में जागीरदारों और शोषण और राजदरबार के कर्मचारियों की लूट का शिकार होने लगी। शाह आलम 1769 से 1806 ईस्वी जब राज सिंहासन पर बैठे तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और जाटों ने आगरे के आसपास लूट मार मचाकर जनता को भयभीत कर दिया था। रुहेलखंड में रुहेलों पठानों का जोर बढ़ रहा था। बादशाह ने विवश होकर अंग्रेजी कंपनी की शरण चाही और दीवानी का सारा कार्य उन्हें सौंपकर इलाहाबाद में उनके एक राजनीतिक पेंशर की भांति रहने लगे। 10 वर्ष बाद जब वह मराठों की सहायता से फिर दिल्ली के सिंहासन पर बैठे तो रुहेले पठानों ने राजमहल पर आक्रमण करके बादशाह की आंखें निकाल ली और कारागार में डाल दिया। दिल्ली पर एक प्रकार के मराठों का अधिकार था और अभी शाह आलम का राज्यकाल समाप्त भी नहीं हुआ था। कि 1804 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इस प्रकार दिल्ली में नाम मात्र की मुगल बादशाही रह गई और उसके वास्तविक अधिकारी अंग्रेज हो गए। यहाँ से दिल्ली की कहानी कुछ असाधारण परिस्थितियों के बीच से गुजरती है, परंतु ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे उस स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है जिसमें उर्दू साहित्य उत्तर भारत में जन्म लेकर आगे की ओर अग्रसर था। आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का प्रभाव जीवन पर जो कुछ पड़ता है उसके वर्णन की आवश्यकता नहीं है। यह बात स्पष्ट है कि मुगल राज्य एक बुझते हुए दीपक के समान रात के अंतिम अंधकार से लड़ रहा था, लेकिन उसमें उतनी शक्ति नहीं थी कि वहाँ किसी प्रकार का प्रकाश फैला सकता। इस युग के सभी बड़े कवियों के यहाँ दिल्ली की इस बिगड़ी हुई हालत का चित्र देखा जा सकता है। ऐसी दशा में कि जब लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, बादशाह के हाथ दुर्बल थे और जीवन अज्ञात के भय से तुच्छ मालूम हो रहा था, एक प्रकार का नैतिक पतन भी आरंभ हुआ। कुछ समय पहले यदि कुछ नहीं था तो धर्म पर गहरे विश्वास के कारण लोग जीवन की समस्याओं को सहन कर लेते थे। अब एक प्रकार की निराशा और अविश्वास का उद्भव हुआ जिसने जीवन को तत्वहीन कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि भारत की जनता जिन वर्गों में कई सौ वर्षों से विभाजित थी उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था। देश की उत्पादन प्रणाली बदली नहीं थी। ग्राम्य जीवन में जो पृष्ठ संख्या 48 एक सामूहिक आत्मीयता थी वह दुर्बल हो गई थी। किसी प्रकार की वैज्ञानिक जानकारी न होने के कारण उत्पादन के साधनों और जीवन के तौर तरीकों में ऐसी समानता जड़ पकड़ गई थी जो आगे बढ़ने में असमर्थ थी। बादशाह स्वयं दुर्बल एवं विलासी थे। उनके जागीरदार भी उसी रंग में रंगे हुए थे। सेना के पास न लड़ाई के सामान थे, न साहस और न अनुशासन। सिपाहियों को वेतन भी ठीक से ना मिलता था, इसीलिए वह जनता पर अत्याचार करके पेट पालते थे। एक मिटते हुए समाज और पतनोन्मुख राज्य में जो बुराइयां जन्म ले सकती हैं वह सब की सब उस समय के भारत में मौजूद थीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि जागीरदारी व्यवस्था में घुन लग चुका था। अब राज्य केवल अपनी परंपराओं के सहारे जीवित था। जनता की सामूहिक शक्ति जो बड़ी से बड़ी क्रांति ला सकती थी सोई हुई पड़ी थी, क्योंकि बहुत दिनों की विवशता ने उसे परास्त कर दिया था और अभी तक उसमें उस चेतना का उद्भव नहीं हुआ था जो उसको अपनी स्थिति बदलने पर मजबूर करती। यह कोई दो चार वर्ष की बात नहीं थी, बल्कि जागीरदारी के पतन का यह युग शताब्दियों में फैला हुआ था। यद्यपि इस बीच में किसी प्रकार का औद्योगिक विकास नहीं हुआ, फिर भी व्यापार के द्वारा कहीं कहीं ऐसे लोग पैदा हो रहे थे जिन्हें मध्यम वर्ग में गिना जा सकता था। इस बात को ना भूलना चाहिए कि 18वीं शताब्दी में भारतवर्ष के कई भागों में अंग्रेजी कंपनी ने अपनी नींव दृढ़ कर ली थी और वह जीवन के जो साधन अपने साथ लाई थी उसका प्रभाव भी बंगाल, मद्रास और बंबई के क्षेत्रों पर पड़ रहा था। जहाँ तक उर्दू साहित्य का संबंध है उसने भी इस प्रभाव को स्वीकार किया, परंतु हिंदू मुस्लिम सभ्यता की पुरानी परिस्थितियाँ स्वयं इतनी दृढ़ थी कि यहाँ नए विचारों की उन्नति तेजी से नहीं हो सकी। यह बात स्पष्ट है कि जब उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है तो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उनका प्रकट होना अनिवार्य है, परंतु ऐसा किसी समान अनुपात से नहीं होता। साहित्य रचना के नियम एक बार पैदा होकर अपना मार्ग स्वयं आप निर्मित कर लेते हैं और साधारण रूप में बहुत जल्द जल्द नहीं बदलते। इसके अतिरिक्त जीवन के मूल आर्थिक साधन भी समान रूप से चल रहे थे, इसलिए साहित्य में किसी प्रकार की नव्य प्रवृत्तियों के जन्म लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस सारे विवाद का अर्थ यह है कि उस समय जो उर्दू साहित्य उत्पन्न हो रहा था उसमें जीवन का चित्रण और समस्याओं की व्याख्या तो अवश्य मिलती है, परंतु जीवन की उन्नतिशील करने वाली शक्ति की कमी है। इसका कारण यह भी है कि उस समय के कवियों का जनसाधारण से संपर्क लगभग टूट गया था और अधिकतर नगरों में बसने के कारण उन परिस्थितियों से अपरिचित थे जो जन समूह के जीवन में व्याकुलता पैदा करती थी। इससे यह न समझना चाहिए कि उस समय की उर्दू काव्य जीवन से अलग अलग थी या केवल कल्पनाओं और सपनों पर निर्भर थी, बल्कि कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय के कवि चेतनापूर्वक जीवन के संघर्ष को पक्षपाती बनकर नहीं देखते थे। पृष्ठ संख्या 49। वर्ग विभाजित समाज में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी श्रेणी में रहना पड़ता है और उसकी विचारधारा उसी वर्ग से तत्व और विषय प्राप्त करती है, परंतु जब वर्गों का विभाजन बहुत स्पष्ट ना हो और उत्पादन के साधन बिल्कुल आदिम अवस्था में हो, उस समय प्रत्येक कवि पूर्ण रूप से केवल अपने वर्ग के उद्देश्यों का प्रचारक नहीं हो सकता। इसलिए इस समय ऐसे कवि भी मिलते हैं जो साधारणतः मानव जीवन की सुंदरता और मानवता के गौरव का वर्णन ऐसी सच्चाई से करते हैं कि उन्हें केवल उच्च वर्ग के विचारों का प्रचारक किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता। 18वीं शताब्दी के उर्दू लेखकों तथा कवियों को इसी पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। कुछ का उल्लेख ऊपर हो चुका है, आगामी पृष्ठों में संक्षेप में उनका वर्णन किया जाएगा जो उर्दू साहित्य को उन्नति की चरम सीमाओं तक ले गए। परंतु उनकी चर्चा से पहले यह भी देख लेना आवश्यक है कि उस समय तक उत्तर भारत में उर्दू साहित्य की क्या-क्या विशेषताएं थीं। सबसे पहली बात तो यह दिख पड़ती है कि अभी गद्य का विकास बहुत कम हुआ था और पद्य में सबसे अधिक उन्नति गजल की हुई थी। यद्यपि मसनवी, मरसिया और दूसरे प्रकार के काव्य रूपों में रचनाएं हो रही थीं, परंतु उनकी प्रगति बहुत धीमी थी। अभी तक कविता राज दरबार से दूर थी, अतः बादशाहों और सम्राटों की प्रशंसा में वह कविताएं नहीं मिलती जिनको कशीदा कहा जाता है। जहाँ तक विचारों और विषयों का संबंध है, उनके यहाँ अधिकतर प्रेम, भक्ति, नैतिकता इत्यादि विषय मिलते हैं। यद्यपि देश पर ईरानी संस्कृति और फारसी भाषा का प्रभाव पड़ रहा था, परंतु ब्रज भाषा और उर्दू दक्षिणी के प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। उस समय के कवियों को अलंकारों में यमक और श्लेष से बहुत प्रेम था। कुछ लोगों का विचार है कि यह ढंग उन्होंने हिंदी काव्य से लिया था और कुछ कहते हैं भारत में फारसी साहित्य का पतन हुआ तो फारसी कविता केवल शब्दों का एक खेल होकर रह गई, इसलिए अलंकारों से बहुत काम लिया जाने लगा। व्याकरण और काव्य शास्त्र की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। यद्यपि शाह हातिम और मिर्जा मजहर ने इसकी ओर संकेत किया था। इसके बाद से जिन कवियों का युग आता है, उन्होंने उसी आधार पर एक विशाल भवन तैयार कर दिया और काव्य साहित्य अपने रूप और अवस्था में भी रचनात्मक सुंदरता की ओर बहुत आगे बढ़ गया। जिस युग का उल्लेख अब किया जा रहा है, उसमें सैकड़ों कवियों के नाम मिलते हैं, परंतु इस जगह केवल उन्हीं की चर्चा की जाएगी जिनका महत्व स्थापित हो चुका है, जैसे हुगा, ताबा, दर्द, सौदा, सोज, मीर, कायम और यकीन। इस संदर्भ में इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि समय एक अविरल सूत्र है और साहित्य के इतिहास को इस तरह विभाजित नहीं किया जा सकता कि एक युग दूसरे युग से पूर्णतया अलग हो जाए। जिस समय कुछ लेखकों कवियों का बुढ़ापा पृष्ठ संख्या 50 होता है तो कुछ की जवानी, कभी-कभी उन्हें एक ही युग में गिन लिया जाता है और कभी-कभी वह अपनी आयु के आधार पर विभाजित कर दिए जाते हैं। इसलिए जब आगे बढ़कर कुछ और कवियों का वर्णन भी होगा, तो यह न समझना चाहिए कि काव्य धारा में कोई बड़ा परिवर्तन हो गया था, बल्कि अपनी सुविधा के लिए सामयिक क्रम को सामने रखते हुए उन्हें युगों में विभाजित कर दिया गया है। ऊपर कहा जा चुका है कि शाह आलम बादशाह के राज्यकाल में दिल्ली को अनेक प्रकार की विडंबनाएं भोगनी पड़ी और बादशाह को इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बंदी के रूप में लगभग 10 वर्ष तक रहना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि कला कौशल और साहित्य के क्षेत्र में बड़ी निराशा फैल गई और कवियों ने जब यह देखा कि दिल्ली में उनके भरण पोषण की सुविधा नहीं रही, उनका आदर सत्कार करने वाले बादशाह और अमीर नहीं रह गए हैं, तो उन्होंने दूसरे राज्य दरबारों की राह ली। कहा जाता है कि इनमें सबसे पहले जिसने अपना घर छोड़ा अवध और अजीमाबाद पटना के दरबार में शरण ली, वह फूंगा थे। उनका नाम अशरफ अली खां था, नदीम के शिष्य थे। अहमद शाह बादशाह को दूध पिलाने वाली धाय के पुत्र थे और हंसना हंसाना उनका काम था। लेकिन जब दिल्ली में कोई सहारा न रहा तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के दरबार में आए और वहाँ से पटना चले गए। उनकी मृत्यु 1772 ईस्वी में हुई। पटना में महाराजा शिताब राय ने उनका बड़ा सम्मान किया और अपने पास से कहीं जाने नहीं दिया। उनकी भाषा बड़ी शुद्ध मीठी और सरल है। उनका एक फारसी और उर्दू संग्रह मिलता है। उर्दू संग्रह का भी प्रकाशित हो गया है। कुछ शेर यह हैं। जख्मे दिल तो सिया नहीं जाता, बिना सिए भी जिया नहीं जाता। ऐ फुगा देखना समझ लेना, दे के दिल फिर लिया नहीं जाता। उसके बिलासो हिज्र में यों ही गुजर गई, देखा तो हंस दिया जो न देखा तो रो दिया। मीर अब्दुल हई, जिनका उपनाम तांबा था, दिल्ली के रहने वाले थे और इतने सुंदर थे कि बादशाह स्वयं उन्हें देखने के लिए उस रास्ते से गुजरे जिस पर वह बैठा करते थे। तांबा अपने समय के बहुत बड़े कवियों में गिने जाते थे। शराब बहुत पीते थे और उसी के कारण युवावस्था में उनका देहांत हो गया। उनका काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिसके अध्ययन से पता चलता है कि उनकी भाषा सरल एवं सरस थी और गजल के लिए जिस प्रकार के कोमल और भावपूर्ण विचारों की आवश्यकता होती है वह उनके यहाँ पाए जाते हैं। मीर तकी मीर ने उनके संबंध में बहुत ठीक कहा है, पृष्ठ संख्या 51, कि यद्यपि उनकी कविता के विषय बहुत सीमित थे परंतु उन्होंने बड़ी रंगीनी से उन्हें प्रस्तुत किया है। वैसे तो उन्होंने सभी प्रकार की कविताएं लिखी हैं, लेकिन उनकी गजलों को उर्दू साहित्य के इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। उदाहरण निम्नलिखित शेर देखिए। नहीं कोई दोस्त अपना, यार अपना, मेहरबान अपना, सुनाऊं किसको गम अपना, अलम अपना, बयां अपना। न ताकत है इशारे की, न कहने की, न सुनने की, कहूँ क्या मैं, सुनूँ क्या मैं, बताऊँ क्या बयां अपना। बहुत चाहा कि आवे यार, या इस दिल को सब्र आए, न यार आया न सब्र आया, दिया मैं जी निदा अपना। सौदे में गुजरती है या खूब तरह तामा, दो चार घड़ी रोना दो चार घड़ी बातें। जिन कवियों ने उर्दू गजल को गजल बनाया उनमें दर्द, सौदा और मीर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रत्येक कवि उस समय के जीवन की व्याकुलता और उद्विग्नता को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। इनके विचारों में कविता का जीवन के प्रति कर्तव्य सजगता पूर्वक उस समय की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को प्रस्तुत करना ही नहीं था, वरन उस वातावरण का चित्रण करना और इस प्रकार उसका उल्लेख करना था कि जग बीती आप बीती का रूप धारण कर सके, या जीवन की साधारण भावनाएं किसी विशेष ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किए बिना सामने आ जाएं, यही उनका बड़ा उद्देश्य था। गजल की रचना में उन्हें इसका अवसर ना मिलता था कि वह समकालीन घटनाओं का वर्णन कर सकें, परंतु जो व्यक्ति उनके काव्य संग्रह का गहरा अध्ययन करेगा उसे यह जानने में कुछ भी कठिनाई ना होगी कि वह जीवन के सच्चे चित्रकार थे। इस स्थान पर उनकी कविताओं का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, परंतु उनकी उन विशेषताओं का उल्लेख आवश्यक है जिनसे उनकी रचना शक्ति का अनुमान लगाया जा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति जो 18वीं शताब्दी की दिल्ली और भारतवर्ष में सामंती व्यवस्था के पतन के कारण जन्म लेने वाली अव्यवस्था को भली भांति समझना चाहता है, वह इन कवियों की रचनाओं और कल्पनाओं में उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ख्वाजा मीर दर्द, जो उर्दू के प्रमुख सूफी कवियों में गिने जाते हैं, 1721 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे। उनके वंश में बहुत दिनों से पीरी मुरीदी चली आ रही थी। उनके पिता ख्वाजा मोहम्मद नासिर अनदलीब स्वयं एक मशहूर सूफी और कवि थे। पृष्ठ संख्या 52। दर्द ने भी जवानी ही से सूफी मत को अपनाया और सरस्वती के चरणों में अपना सिर झुका दिया। वह बड़े विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तसव्वुफ तो उनका ओढ़ना बिछौना था, जिसके बारे में उन्होंने फारसी में कई पुस्तकें लिखी थी। इसके अतिरिक्त वह संगीत कला से भी पूर्णतया परिचित थे और कविता में निपुण गिने जाते थे। जब दिल्ली की हालत बहुत खराब हो गई और सभी उसे छोड़कर बाहर जाने लगे, उस समय भी दर्द ने अपनी चौखट नहीं छोड़ी। उनका एक छोटा सा काव्य संग्रह मिलता है जिसमें फारसी और उर्दू की कविताएं सम्मिलित हैं। उन्होंने दिल्ली ही में 1785 ईस्वी में अपने प्राण त्यागे और वहीं दफन किए गए। दर्द की कविताएं अधिकतर गजल रूप में मिलती हैं, जिनमें तसव्वुफ के गूढ़ सिद्धांत साफ सुथरी और सरल भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं। उनका उपनाम दर्द है तो उनकी कविताओं में भी वही शोकमय और करुणामय भावनाएं मिलती हैं। उनकी भाषा लोचदार, मुलायम और प्रवाहपूर्ण है। दिल्ली की बोलचाल की वह भाषा जो अति सरल और मीठी थी, मीर के बाद दर्द ही की कविता में मिलती है। उस समय के सभी कवियों लेखकों ने दर्द को श्रेष्ठ कवि माना है। यह बात भी याद रखने योग्य है कि उनकी मान मर्यादा केवल उनकी कविता के कारण नहीं थी, बल्कि एक बड़े भक्त और सूफी फकीर के नाते भी सहस्त्रों मनुष्य उनसे बंधे हुए थे। वह कभी राज दरबार में नहीं जाते थे, फिर भी राज दरबार से उनकी खानकाह आश्रय की सहायता होती थी। उनके छोटे भाई मीर मुहम्मद असर भी कवि थे और कविता में उनके शिष्य थे। उर्दू के अच्छे कवियों में गिने जाते थे। उनका काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है और एक मसनवी ख्वाबो ख्याल बहुत प्रसिद्ध है। उनकी कविता का ढंग भी दर्द से मिलता जुलता है। दर्द के छोटे से संग्रह में अधिकतर गजलें छोटी बहारों में हैं, परंतु वह ऐसी प्रभावशाली हैं कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उनके लिए कहा है कि वह तलवारों की तेजी नश्तरों में भर देते हैं। उनके कुछ शेर यह हैं: जग में आकर इधर उधर देखा, नहीं आया नजर जिधर देखा, जान से हो गए बदन खाली, जिस तरफ तूने आंख भर देखा। नाला फरियाद आह और यारी, आप से हो सका सो कर देखा, उन लबों ने ना की मसीहाई, हमने सौ सौ तरह से मर देखा। पृष्ठ संख्या 53। तू बिन कहे घर से कल गया था, अपना भी तो जी निकल गया था, अब दिल को संभालना है मुश्किल, अगले दिनों कुछ संभल गया था। मैं सामने से जो मुस्कुराया, होठ उसका भी दर्द हिल गया था, अहले जमाने आगे भी थे और जमाना था, पर अब जो कुछ है थे तो किसी ने सुना ना था। वो दिन किधर गए कि हमें भी फराग था, यानी कभू तो हम में भी दिल था दिमाग था। गुजरा हूँ जिस खराबे में कहते हैं वहाँ के लोग, है कोई दिन की बात, ये घर था ये बाग था। आखिरी तीन शेरों में दिल्ली के विनाश और जीवन के निस्सार हो जाने का कितना सुंदर विवरण किया गया है। इनसे वह वातावरण पूर्ण रूप से हमारे सामने आ जाता है जिसमें एक मिटती हुई सभ्यता अपना दुख प्रकट करती है और भविष्य से अनभिज्ञ होने के कारण निराश हो जाती है। उस समय के एक और महाकवि मिर्जा मुहम्मद रफ़ी सौदा थे। उनका जन्म 1706 ईस्वी में हुआ। इनके पिता एक व्यापारी के रूप में ईरान से दिल्ली आए थे और फिर यहीं के हो गए। सौदा स्वभाव ही से एक अमीराना और हंसने हंसाने वाला दिल रखते थे। राज दरबार में उनकी पहुंच थी और बड़े जागीरदारों से उनकी मैत्री थी। कहा जाता है कि शाह हातिम के शिष्य थे, परंतु सच यह है कि उन्हें अपने युग के दूसरे विद्वानों से भी प्रेरणा प्राप्त हुई थी। जब अहमद शाह दुर्रानी और मराठों के आक्रमण से दिल्ली की स्थिति खराब हो गई थी, तो सौदा भी बाहर निकले। सबसे पहले वह फर्रुखाबाद के नवाब मेहरवान खां रिंद के यहाँ गए और 1771 के लगभग अवध की राजधानी फैजाबाद पहुँचे। इतिहासों में है कि शुजाउद्दौला ने उनको पत्र लिखकर बुलाया था। आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी लखनऊ बनाई तो सौदा भी लखनऊ चले आए। यहाँ वह बड़ा संतोषजनक जीवन बिताते थे क्योंकि उन्हें अवध सरकार से 6,000 रुपये वार्षिक मिलते थे। 1781 ईस्वी में लखनऊ ही में उनका देहांत हुआ।